स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 14 नवंबर और दिन शनिवार। पेरिस में चरमपंथी हमला, कई जगह गोलीबारी और धमाके। दुनिया भर में हमले की निंदा। प्रधानमंत्री मोदी ने लंदन के विम्बले स्टेडियम में हजारों लोगों को किया संबोधित।
वो सोचते हैं कैसे आप सोच सकते हैं, लेकिन मेरे देशवासियों, आपके आशीर्वाद से मुझे पूरा भरोसा है कि भारत एक सूर्य शक्ति राष्ट्र बन सकता है।
सऊदी अरब में प्रताड़ित नौकरानी भारत लौटी, उन पर एक खास रिपोर्ट। और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार समीर आत्मज मिश्र से। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई गोलीबारी और धमाकों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पुलिस के अनुसार बैटाकला कंसर्ट हॉल में करीब 100 लोग बंधक बनाए गए थे, जिनमें से किसी को भी बचाया नहीं जा सका है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने राष्ट्र के नाम संदेश में आपातकाल की घोषणा की है। फ्रांस की सीमा को सील कर दिया गया है। अभी तक इस घटना की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों का हाथ हो सकता है। इस हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने फ्रांस को हर तरह की मदद का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन यात्रा के दूसरे दिन कल लंदन के विम्बले स्टेडियम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज विश्व भारत की शक्ति को पहचानता है और अब दुनिया में भारत का स्थान औरों के साथ बराबरी का होना चाहिए। इस मौके पर मोदी ने घोषणा की कि 15 दिसंबर से लंदन और अहमदाबाद के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी। वेम्बले स्टेडियम में मौजूद करीब 50,000 लोगों को मोदी ने एक घंटे से भी ज्यादा देर तक संबोधित किया। इस मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी मौजूद थे। अमरीकी सेनाओं का कहना है कि वे अभी भी इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश में हैं कि गुरुवार को सीरिया में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी जॉन जिहादी को मार दिया गया है या नहीं, लेकिन पेंटागन के एक प्रवक्ता का कहना है कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि रक्का शहर के निकट जॉन जिहादी की ड्रोन हमले में मौत हो गई है। इस बीच ब्रिटेन के सहायताकर्मी डेविड हेंस की विधवा का कहना है कि इस घटना से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिली है। डेविड हेंस की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। डेविड हेंस की पत्नी का कहना था, उसके मरने से मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिलने वाली। इससे डेविड और तमाम बंधकों की मौत को नहीं बदला जा सकता। हमें हमारा पति अब नहीं मिल सकता, हमारे बेटा बेटी नहीं मिल सकते, लेकिन फिर भी जब हम ये सुनेंगे कि इन घटनाओं को अंजाम देने वाला आतंकवादी मारा गया है तो हमें संतोष जरूर मिलेगा। ये थी डेविड हेंस की विधवा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जापान के दक्षिण पश्चिमी तट पर 7 की तीव्रता के भूकंप के बाद वहां सुनामी की आशंका बढ़ गई है। नकानोशिमा के पास समुद्र के भीतर ऊंची लहरें उठ रही हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। इस बीच दक्षिणी जापान में सुनामी की चेतावनी को हटा लिया गया है। पश्चिमी किनारे पर इसराइल और फलस्तीन की ताज़ा झड़पों में 3 और लोगों की मौत हो गई है। हेब्रॉन के पास एक बंदूकधारी ने कुछ यहूदियों पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है नवंबर की 14 तारीख और दिन शनिवार। कार्यक्रम की शुरुआत पेरिस में हुए चरमपंथी हमले से। पेरिस में कल रात करीब 9 बजे हुए अलग अलग इलाकों में हमलों में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस्लामिक स्टेट पर शक जताया जा रहा है। और ताज़ा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र।
हमला पेरिस के स्थानीय समयानुसार रात के करीब 9 बजे हुआ। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 2 जगहों पर गोलीबारी हुई और कुछ जगहों पे धमाके हुए हैं। सबसे घातक हमला बैटाकला आर्ट सेंटर के पास हुआ, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए। इसी सेंटर में करीब 100 लोग बंधक बनाए गए थे, जिनकी हमले में मौत हो गई है। दूसरा हमला बैटाकला सेंटर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक रेस्तरां पेटाइट कम्बोज के पास हुआ। फ्रेंच टीवी के मुताबिक कम से कम एक बंदूकधारी ने ऑटोमेटिक राइफल से पेटाइट कम्बोज रेस्तरां में फायरिंग की है। बीबीसी कैमरामैन ने कम से कम 10 लोगों को रेस्तरां के पास देखा था जिनकी या तो मौत हो गई थी या फिर वो गंभीर रूप से घायल थे। तीसरा हमला पेरिस के नेशनल स्टेडियम से सटे एक बार के पास हुआ। वहां कम से कम 3 धमाके की भी खबर है। एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना था, अचानक धमाके की आवाज हुई और लोग बदहवास होकर भागते दिखे। पहले कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर पता चला कि हमला हुआ है और धमाके हो रहे हैं। मैंने ऑटोमेटिक बंदूकों से गोलियां चलने की आवाज सुनी। ये थे एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। जिस समय ये हमले हुए उस समय स्टेडियम में फ्रांस और जर्मनी के बीच फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। वहां से भी 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। कहा जा रहा है कि यहां पर आत्मघाती हमला हुआ था। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भी मैच देख रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संदेश में आपातकाल की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पूरा देश हमलावरों के खिलाफ एकजुट है और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी।
Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime,
My dear countrymen,
इस बीच फ्रांस की सीमा को सील कर दिया गया है। पेरिस निवासियों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। स्थानीय पुलिस की मदद के लिए सेना को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है, लेकिन बीबीसी के राजनयिक संपादक मार्क अर्बन के मुताबिक चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के समर्थक सोशल मीडिया पर हमले की तारीफ कर रहे हैं। वे लोग पेरिस इन फ्लेम्स हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीबीसी न्यूज़ नाइट के राजनयिक संपादक मार्क अर्बन ने ट्वीट किया है कि इस्लामिक स्टेट के समर्थक सोशल मीडिया पर इस हमले को लेकर खुशी भी जता रहे हैं। वहीं घटना की अंतर्राष्ट्रीय जगत ने निंदा की है और फ्रांस को हर तरफ से सहायता की पेशकश की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ट्वीट किया है कि पेरिस में आज हुई घटना से वो स्तब्ध हैं और पूरी तरह से फ्रांस के लोगों के साथ हैं। जो भी मदद हो सकेगी ब्रिटेन करेगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी हमले की निंदा की है और इसे कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया है। ओबामा ने कहा कि यह मानवता पर हमला है और अमेरिका पूरी तरह से फ्रांस के साथ खड़ा है।
ये थे समीर आत्मज मिश्र। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने पेरिस स्थित वरिष्ठ पत्रकार वायजो नारावने से बात की और सबसे पहले उनकी खैरियत पूछी।
नहीं, मैं सुरक्षित हूँ। मैं वहाँ पर गई थी, कोशिश बहुत की थी अंदर जाने की जहाँ पर सब हमला हो रहा था, लेकिन बहुत वहाँ पे पुलिस का बहुत जबरदस्त बंदोबस्त है और सारे जर्नलिस्ट को उन्होंने बाहर रखा था। अब हमला कर दिया है उस थिएटर पर, सब कुछ खत्म हो गया है। कह रहे हैं कि 118 लोग मारे गए हैं और ये अब थोड़ी देर में बढ़ सकता है क्योंकि उनकी फाइनल गिनती नहीं है ये।
वैजू, माफ करिएगा, 118 सिर्फ उस कॉन्सर्ट हॉल में या पूरे पेरिस में जो अलग अलग हमले हुए हैं उनमें?
पूरे अलग अलग हमले में
जी।
तो 3 लोग जो थे वो स्टेडियम के सामने, जो उन्होंने गैस सिलेंडर को फटा के उसमें जो अटैक किया था बम ब्लास्ट में, उसमें 3 लोग मारे गए हैं। फिर दूसरे जब रेस्टोरों में थे उस वक्त जिन्होंने आम जो लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, पति कम्बोज करके नाम का रेस्टोरेंट है उसके वहाँ पर और आजू बाजू की जो गलियाँ थी जो रास्ते हैं उसमें भी, और उसके बाद वो 4 टेररिस्ट वहाँ से भाग के उस बाटाक्लॉन थिएटर में गए जहाँ पर एक कॉन्सर्ट चल रहा था, रॉक कॉन्सर्ट चल रहा था, और जैसे ही अंदर गए वैसे ही उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। तो इस वक्त प्रेसिडेंट होलांद वहाँ पर पहुँच गए हैं अपने सबसे ज्यादा 4 बड़े इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, जस्टिस मिनिस्टर के साथ प्रेसिडेंट गए हुए हैं। फ्रांस में इस वक्त फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, इसका मतलब है उनके सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं, आने जाने पे बहुत ज्यादा चेक्स होंगे
जी।
और पुलिस किसी भी तरफ जाके कहीं भी देख के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं।
क्या हम ये कह सकते हैं कि हमले पूरी तरह खत्म हो गए हैं?
इस वक्त यही समझ में आता है कि पूरी तरह हमले खत्म हो गए हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि जिन्होंने वो बम फटाया था जहाँ पे वो सेंदनी के जो स्टेडियम है उसके सामने जो बम फटाया है, वो सुसाइड अटैकर थे या सुसाइड अटैकर नहीं थे, उसके ऊपर हमें इस वक्त ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है
जी।
तो जो हमें पुलिस कह रही है वो कि चार लोग, चार आतंकवादी जो थे वो मारे गए थे, वो बाटाक्लाव में मारे गए।
कौन लोग थे इसके पीछे, कोई आधिकारिक तौर पर पुलिस का या
किसी ने अभी तक किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। लेकिन प्रेसिडेंट होलोन जब टेलीविजन पे आए थे, उन्होंने उस वक्त मेरे ख्याल से जब उन्होंने अपना भाषण किया, बहुत छोटा भाषण था, चार मिनट के लिए उन्होंने बात की, उन्होंने कहा था ये तो भयानक चीज है जो हो रही है इस वक्त, और ये भी कह दिया था कि हमें मालूम है कौन है। तो बहुत जबरदस्त उन्होंने हिंट दी थी, जैसे कि फ्रांस को मालूम था कि कौन था। और जो यहाँ पर सीक्रेट सर्विस के लोग हैं जिनके साथ हमारा कांटेक्ट है, वो लोग कह रहे थे कि काफी दिनों से फ्रेंच सीक्रेट सर्विसेज को मालूम है कि अटैक आने वाला है। दो दिन पहले उन्होंने किसी आदमी को गिरफ्तार किया जो साउथ ऑफ फ्रांस में बहुत बड़ा नेवल पोर्ट है टूलों करके, जहां पर वो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमला करने वाला था, और उसका जो ट्रैफिक है उन्होंने इंटरप्ट करके उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहां पर तो सब कन्विंस्ड हैं कि ये आइसिस के साथ मिला हुआ है, क्योंकि सीरिया से उनको बहुत सारी थ्रेट्स आ रही हैं, और फ्रांस के जो लोग हैं, जो यहाँ के जो जवान लोग हैं, सबसे बड़ी यूरोप से कंटिंजेंट जो सीरिया में गई है आइसिस के साथ लड़ने के लिए, वो फ्रांस से है। काफी सारे उनमें से लोग वापस आए हैं, और जो सीरिया में जाके रेडिकलाइज हो के वहां पे लड़ के अब यहाँ आके वो अटैक्स करना चाह रहे हैं।
तो ये थी पेरिस से वरिष्ठ पत्रकार वैजू नारावने। और आपको ये बता दें कि ताज़ा जानकारी के मुताबिक मरने वालों की संख्या 140 तक पहुंच गई है। और अब चलते हैं ब्रिटेन। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि 3 दिनों की ब्रिटेन यात्रा पर हैं, कल उन्होंने अपनी यात्रा के दूसरे दिन विम्बले स्टेडियम में लगभग 50,000 भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया से मेहरबानी नहीं बल्कि बराबरी चाहता है। पूरी जानकारी के साथ लंदन से बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद।
लंदन के ऐतिहासिक फुटबॉल स्टेडियम वेम्बली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय मूल के लगभग 50,000 लोगों ने स्वागत किया। इस रंगारंग समारोह में इंग्लैंड के कई शहरों से अपने हाथों में भारत का झंडा लिए भारतीय मूल के लोग उमड़ आए थे। इतनी भीड़ केवल यहां इंग्लैंड और जर्मनी के बीच फुटबॉल मैच में ही देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज विश्व भारत की शक्ति को पहचानता है। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच श्री मोदी ने कहा, अब दुनिया में भारत का स्थान औरों के साथ बराबरी का होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा,
जब मैं विश्व के नेताओं से मिलता हूं और 175 गीगावाट बिजली के लक्ष्य की बात करता हूं, रिन्यूएबल एनर्जी की, सारे विश्व के नेता, उनको अचरज होता है। वो सोचते हैं कैसे आप सोच सकते हैं, लेकिन मेरे देशवासियों, आपके आशीर्वाद से मुझे पूरा भरोसा है कि भारत एक सूर्य शक्ति राष्ट्र बन सकता है।
प्रधानमंत्री अपने निराले अंदाज में पूरे जोश में बोल रहे थे। उनका कहना था,
2003 में आया था, तब मैं काम यहाँ करके गया था, लंदन अहमदाबाद के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट, तब अटल जी की सरकार थी, यहाँ के लोगों ने मुझे जो कहा मैंने उनको पहुँचाया और अटल जी ने उस काम को कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ आप जानते हैं, कैसे हुआ मैं बताना नहीं चाहता, क्यों हुआ मुझे भी मालूम नहीं, किसने किया अब नाप देने की जरूरत क्या है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, 15 दिसंबर से लंदन अहमदाबाद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाएगी।
श्री मोदी वही कह रहे थे जो वहां मौजूद लोग सुनना चाह रहे थे। वेम्बली स्टेडियम में मौजूद लगभग 50,000 लोगों ने श्री मोदी के इस ऐलान का तालियों से स्वागत किया। FDI के मामले में श्री मोदी ने कहा कि उनके लिए FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि फर्स्ट डेवलप इंडिया है। बीते साल के मुकाबले भारत में विदेशी निवेश में 40% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रतीक है विश्व का भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है। डेविड कैमरन ने नमस्ते कहकर सभी का अभिवादन किया। स्टेडियम के अंदर श्री मोदी का लंबा भाषण चल रहा था तो स्टेडियम के बाहर उनके विरोध में एक लंबा प्रदर्शन। अधिकतर प्रदर्शनकारी कश्मीर और खालिस्तान के पक्ष में नारे लगा रहे थे लेकिन उनकी संख्या 400 से 500 तक थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल के अहम लोगों के साथ डिनर किया। जुबैर अहमद, BBC, लंदन।
तो विमले में तो एक शानदार कार्यक्रम हुआ लेकिन सवाल तो ये है कि ब्रिटेन यात्रा से भारत को, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर हासिल क्या हुआ? यही सवाल पूछा हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने हिंदू अखबार की राजनयिक संपादक सुहासिनी हैदर से।
देखिए, इतना ज़रूर है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो रिश्ते थे पिछले कुछ सालों से लग रहा था कि उनमें कुछ मंदी आ गई थी। अगर आप देखें दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड था वो 5 साल में काफ़ी गिर चुका है, 1 बिलियन पाउंड्स के करीब कहते हैं कि इतना गिर चुका है। दोनों में ट्रेड काफ़ी मिसट्रस्ट भी है और हमने जो CEO फोरम पे देखा था बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिसकी वजह से ब्रिटिश बिजनेसेस इंडिया में नहीं इन्वेस्ट करना चाहती और ब्रिटेन चाहता है कि इंडिया ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी करे। तो मुझे लगता है कि इस एंगल से तो काफ़ी काम हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के दौरान। सिक्योरिटी इश्यूज़ पे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उन्होंने ऐलान किया है उसका मतलब है एक मॉडर्नाइजेशन रेनोवेशन ऑफ दीज टाइज जो ये दोनों कर पाए हैं। और जो न्यूक्लियर डील पे है संभवतः ये सिम्बॉलिक है क्योंकि भारत ऑलरेडी काफ़ी सारा न्यूक्लियर मटेरियल और कंट्री से ला रहा है लेकिन ब्रिटेन के साथ इस तरह का समझौता करना और जो भारत की आशा है कि अगले साल में ये संयुक्त राष्ट्र का सीट या MTCR और NSG का मेंबरशिप भारत को मिल पाए उसमें यूनाइटेड किंगडम का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है हर तरफ से जो यहाँ पर कोशिश थी वो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो रिश्ते उनको फिर से पटरी पे लाना और प्रधानमंत्री मोदी के खुद के रिश्ते को भी पटरी पे लाना क्योंकि आपको याद होगा कि 10 साल के लिए यूनाइटेड किंगडम ने उन पे एक बैन की तरह ही लगाया हुआ था। गुजरात के दंगों के बाद उन्होंने उनको यहाँ इनवाइट नहीं किया था, वीज़ा नहीं इनका रिजेक्ट किया था लेकिन उनकी मतलब एक ही विजिट हुई थी 2003 में। तो उसके बाद इनका यहाँ आना पर्सनली भी बहुत ही महत्वपूर्ण।
एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी वेम्बली का इवेंट खत्म हुआ, नरेंद्र मोदी पहले ऑस्ट्रेलिया गए फिर मैडिसन स्क्वायर अब यहाँ वेम्बली, जो शोमैन और जो वो रॉकस्टार इमेज उनका प्रोजेक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब 5,000 मेडिसन में 18 अभी 50+ बिगेस्ट एवर फायरवर्क्स जो हुए वेम्बली में, तो क्या ये रियल टर्म्स में ट्रांसलेट करता है, फॉरेन पॉलिसी को हेल्प करता है या ये?
अब ये तो हम अभी तक कह नहीं सकते हैं कि अगर फॉरेन पॉलिसी पे इसका ज़्यादा असर होता है लेकिन इतना ज़रूर है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ भी वो गए हैं।
तरीका है क्या
आपने जैसे कहा, क्योंकि जो भारतीय कम्युनिटी है आप दुनिया के किसी भी देश में देख लें जहाँ पर भारतीय कम्युनिटी है उसको काफ़ी रिस्पेक्ट है, उसकी इज्जत बहुत है। ये एक हार्डवर्किंग कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड, इसकी जो सेविंग्स हैं $44 बिलियन के करीब है और अब हम देख रहे हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम में देखा है कि 10 लॉ मेकर्स अब इलेक्ट हुए हैं और देशों में भी हमने कनाडा में देखा जहां 20 MPs ऐसे हैं जो भारतीय ओरिजिन के हैं। तो उनकी अपनी एक विख्यात है, उनकी एक पावर भी इन देशों में है। तो उनके साथ नाता जोड़ना भारत के लिए भी अच्छा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इतना ज़रूर है कि शायद बायलैटरल टाइज पे इसका ज़्यादा असर ना हो, जो हमने वेम्बली में देखा है उसका कोई उससे ताल्लुक नहीं है कि भारत और UK के बीच में क्या रिश्ते होंगे, लेकिन ये अब इस गवर्नमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इस हवाले से कि ये जो कम्युनिटी है इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादा रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, उनको शायद वोटिंग राइट्स भी देना चाहें अगले कुछ साल में। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन देशों में सबसे ज़्यादा भारतीय कम्युनिटी की स्ट्रेंथ थी वहाँ वो जा चुके हैं। इसके अलावा कि ईस्ट अफ्रीका में शायद नहीं गए हैं और करिबियन आइलैंड्स में नहीं गए हैं, लेकिन और सब देशों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 29 देशों का दौरा करके इन 2 साल में वो उन्होंने पूरा किया है।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर। और अब एक खास खबर। आपको याद ही होगा कि सऊदी अरब की उस भारतीय नौकरानी की कहानी जिसने दावा किया था कि उनके मालिकों ने उनका हाथ काट दिया था क्योंकि वो उनकी प्रताड़ना से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी। कस्तूरी मुनिरत्नम उन हज़ारों भारतीयों में से एक हैं जो हर साल सऊदी अरब में घरेलू नौकरानी का काम करने जाती हैं। हाथ कटने के बाद एक महीने वो रियाद के अस्पताल में रहीं और फिर बीते रविवार चेन्नई लौटी। अपने पहले टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बीबीसी संवाददाता संध्या रविशंकर को बताया कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था और कैसे उन पर वो कथित हमला हुआ। इस बातचीत में कस्तूरी मुनिरत्नम ने क्या कुछ कहा, रिपोर्ट सुना रहे हैं मुकेश शर्मा।
कस्तूरी मुनिरत्नम कमाई करके घर को पाल रही थी। उनके बूढ़े पति को फेफड़ों की दिक्कत है और उन्होंने कभी काम नहीं किया है। उनके बेटे मोहन का कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद से वो काम नहीं कर सकते। चेन्नई में जब उन्हें काम नहीं मिला तो कस्तूरी ने इन गर्मियों में सऊदी अरब जाने का फैसला किया जिससे वो नौकरानी का काम कर सकें।
घर पर काफी मुश्किलें थी। मेरा एक बेटा है और पति काफी बूढ़े हैं। मेरा बेटा मिस्त्री का काम करता था, जब वो ऊंचाई से गिर गया उसके बाद से वो काम नहीं कर सका। मैंने 3 बेटियों की शादी की, 2 बेटियों के पतियों ने उन्हें छोड़ दिया। हमारा अपना घर नहीं है। मैंने बहुत से लोगों से काम मांगा, किसी ने फिर मुझे इस नौकरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा हम आपको काम देंगे, आपको काफी पैसा मिलेगा, तो मैं चली गई।
सऊदी अरब में इस समय 10 लाख से भी ज्यादा भारतीय काम कर रहे हैं जिनमें हजारों लोग घरेलू नौकरों के तौर पर हैं। एजेंसी काम करने वालों को उन परिवारों से मिलाती है जो उनका वीजा स्पॉन्सर करते हैं, और अगर कर्मचारी को नौकरी बदलनी है या देश छोड़ना है तो उसके लिए उन परिवारों की अनुमति जरूरी है। कस्तूरी को अरबी भाषा नहीं आती और उसे रियाद में एक परिवार में भेजा गया जिसने वहाँ पहुँचने पर उसका पासपोर्ट रख लिया।
मैं जब वहाँ पहुँची तो मेरे मालिकों ने मुझसे कहा कि चूंकि मैं तमिल हूँ इसलिए अगर बाहर गई तो लोग तुम्हारा गला काट देंगे और सामान ले लेंगे। उन्होंने मुझसे बाहर नहीं जाने को कहा। मैं कभी बाहर नहीं जाती थी। उस महिला ने 2-3 दिन तक मुझसे अच्छा बर्ताव किया, उसके बाद उसने मुझे बासी खाना देना शुरू कर दिया और बुरा बर्ताव करने लगी। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें तमिल नौकरानी नहीं चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैंने क्या गलती की है। मैंने उनसे कहा कि अगर मैं उन्हें पसंद नहीं हूं तो बाबा यानी एजेंट को आने को कहिए, मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए। उसने मेरी तनख्वाह ले ली। वो मेरे फ़ोन में सिम कार्ड भी नहीं डालती थी, उसने मेरे फ़ोन का चार्जर भी ले लिया।
रियाद में 2 महीने बाद कस्तूरी के मालिकों ने उसे एक शाम बताया कि वे उसे पुलिस थाने भेज देंगे जहाँ उसे बंदी बना लिया जाएगा।
मैं डर गई। तब मैं अपने मालिक की बेटी के घर गई जो कि पास में ही था। उनकी बेटी का ड्राइवर एक तमिल बोलने वाला लड़का था। मुझे लगा कि अगर उन लोगों ने मुझे पुलिस के सुपुर्द कर दिया तो किसी को पता ही नहीं चलेगा।
मगर जब कस्तूरी आई तो ड्राइवर घर पर नहीं था।
तब तक मेरी मालकिन घर आ चुकी थी। उसने सबको फोन कर दिया था, साथ ही कह दिया था कि मैं घर पर नहीं हूं और घर छोड़कर चली गई हूं। उस रात उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने भागने की कोशिश क्यों की। उसने अपनी गर्दन की ओर इशारा किया और हाथ घुमाया। उस समय उसका पति किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो अपनी घड़ी की ओर बार बार देख रहा था और दोहरा रहा था, साकरी साकरी। अरबी में साकरी का मतलब चाकू होता है। उसके बाद मैं अपने घर में गई और कुछ साड़ियाँ निकाली। मैंने बेड से 2 साड़ियाँ बांधी और उन्हें खिड़की से नीचे लटका दिया जिससे वो रस्सी की तरह उसका इस्तेमाल करके नीचे उतर सके। मैंने साड़ी पकड़ी और अभी मैं खिड़की पर चढ़ने ही जा रही थी कि मैंने एक तेज़ आवाज़ सुनी। उसके साथ ही मैं गिर गई। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। मेरे शरीर से मेरा हाथ काट दिया गया था। मैंने वो नहीं देखा और मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ। मेरा पैर टूटा हुआ था और वहाँ काफ़ी दर्द हो रहा था। मेरे मालिकों ने अस्पताल फ़ोन किया। एक प्लास्टिक बैग में वो मेरा हाथ लेकर अस्पताल पहुँचे। पुलिस भी आई मगर मुझसे एक शब्द नहीं पूछा। अस्पताल ने झूठी रिपोर्ट दे दी। मुझे इन सब का अंदाज़ा तब हुआ जब मैं वापस भारत पहुँची।
रियाद पुलिस के एक प्रवक्ता ने संवाददाताओं को बताया कि कस्तूरी मानसिक अस्थिरता का शिकार थी और भागने की कोशिश में गिरने के दौरान अपना हाथ गंवा बैठी। भारत सरकार ने हमले को लेकर अपनी जांच बैठाई और कस्तूरी को मुआवजा भी दिया है, मगर उसे अपने पूर्व मालिकों से मुआवजा चाहिए, जिन पर कोई आरोप भी दर्ज नहीं हुआ।
मैं अब काम नहीं कर सकती। मैं अब घर का कोई काम नहीं कर सकती। मैं अपने बाल तक नहीं बांध सकती। अब मैं क्या करूंगी? मेरे लिए तो परेशानी काफी बढ़ गई है।
इस मामले ने सऊदी अरब में घरेलू नौकरों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर चिंताएं सामने रखी हैं। इंडोनेशियाई सरकार ने 2011 में घरेलू नौकरों के सऊदी अरब जाने पर रोक लगा दी थी। कस्तूरी चाहती है कि भारत सरकार भी ऐसा ही करे।
बीबीसी इंडिया बोल।
लाल कृष्ण आडवाणी समेत भारतीय जनता पार्टी के चार वरिष्ठ नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व की कड़ी आलोचना की। बिहार में हार पर वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पार्टी ने दिल्ली की पराजय से सबक नहीं सीखा। पार्टी में आंतरिक कलह फिर सबके सामने आया। क्या इससे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? आडवाणी जैसे पुराने नेता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्या पार्टी में आने वाले दिनों में किसी तरह की उठापटक मचेगी या बात आई गई हो जाएगी? यही है शनिवार 14 नवंबर को होने वाले बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें इन नंबरों पर 1811-7000 और 1811-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का। जी समीर बताएं।
जी इकबाल, एक अखबारों में नरेंद्र मोदी की वेम्बले स्टेडियम में जो उन्होंने भाषण दिया, संबोधित किया भारतीय समुदाय के लोगों को, वो खबर जो है वो छाई हुई है। लगभग सभी अखबारों ने अपनी पहली खबर उसी को बनाया है। उसके अलावा अगर बात करें तो तमिलनाडु में 24 घंटे बारिश से चेन्नई समेत कई शहरों में 55 मरे, ये खबर दैनिक भास्कर की है। दूसरे अखबारों में भी ये खबर है। और अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो एक बड़ी रोचक खबर है इंडियन एक्सप्रेस में, दिल्ली स्वीपर्स टू फ्लाई टू जापान साउथ कोरिया फॉर हाइजीन लेसन्स, जो साफ़ सफाई के बारे में, वो जानकारी के लिए स्वीपर्स जो काम करते हैं, सफाई कर्मी हैं, उनको जापान और दक्षिण कोरिया ले जाएगी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, जो जिसको NDMC कहते हैं, उसके माध्यम से ये लोग जाएंगे साफ़ सफाई का पाठ पढ़ने के लिए। बिहार की करारी हार पर भाजपा में घमासान जारी, अखबार ये हिंदुस्तान लिखता है। अखबार के मुताबिक भाजपा सांसद आरके सिंह और मनोज तिवारी भी अब केंद्रीय नेतृत्व को सीधे तौर पर प्रहार करने में सामने आ गए हैं। यमुना 5 साल में साफ हो जाएगी, कल शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है और उन्होंने यमुना पर आरती की शुरुआत की है, जिस तरह से हरिद्वार और बनारस में गंगा आरती होती है। और खबरें और भी हैं लेकिन मुझे लगता है कि समय कम है।
बहुत शुक्रिया समीर। और बस आपको एक दफ़ा फिर ये बता दें कि पेरिस में हुए चरमपंथी हमले में 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कंसर्ट हॉल में जो जिन लोगों को बंधक बनाया गया था, पुलिस ने वहां अभियान किया है और उसमें भी लगभग 100 लोग मारे गए हैं। और पूरे हमले को जोड़ दिया जाए तो फ्रांस मीडिया के अनुसार तकरीबन 140 लोग मारे जा चुके हैं। और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई गोलीबारी और धमाकों में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार बैटाकला कंसर्ट हॉल में 100 लोग बंधक बनाए गए थे और उनमें से किसी को भी बचाया नहीं जा सका है। इस हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन यात्रा के दूसरे दिन कल लंदन के वेम्बले स्टेडियम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। अमरीकी सेनाओं का कहना है कि वे अभी भी इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश में हैं कि गुरुवार को सीरिया में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी जॉन जिहादी को मार दिया गया है या नहीं। जापान के दक्षिण पश्चिमी तट पर 7 की तीव्रता के भूकंप के बाद वहां सुनामी की आशंका बढ़ गई है और पश्चिमी किनारे पर इसराइल और फलस्तीन की ताज़ा झड़पों में 3 और लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन पल पर बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।